ओम शांति। हमारे ब्राह्मण जीवन में योग हमारा फाउंडेशन है और इस योग को लगाने के लिए गीत एक बहुत सुंदर सा माध्यम है। इसलिए हम बाबा के घर में हमेशा देखते हैं कि कोई भी क्लासेस की शुरुआत, योग की शुरुआत गीतों से होती है, क्योंकि गीत एक ऐसा माध्यम है जो परमात्मा से हमें बहुत जल्दी इजीली जोड़ देता है। और बाबा के यज्ञ में सतीश भाई जी एक ऐसी अलौकिक विभूति है जिन्होंने बाबा के बहुत सारे हजारों से ज्यादा गीतों को ईश्वरीय अलौकिक भाषा में लिपिबद्ध किया है। और संसार की कई आत्माएं, ब्राह्मण तो सुनते ही है, पर और सारी आत्माएं भी इनके गीतों को सुनकर मंत्रमुग्ध होते हैं और परमात्मा के साथ की अनुभूति करते हैं, एकाग्रता की, परमात्म स्नेह की अनुभूति करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गीतों के द्वारा हम परमात्मा को अनुभव करते हैं और इसके निमित्त बने हैं सतीश भाई जी। तो हमेशा सोचती हूँ कि सतीश भाई इतने गीत कैसे लिख पाते हैं, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं किसने लिखा है, सतीश भाई जी ने लिखा है। तो वंडर है, इतने सारे अलौकिक शब्दों की डिक्शनरी है और एक एक शब्द को लिपिबद्ध करके ऐसे सुंदर से गीत बन जाते हैं। तो सतीश भाई जी बाल्यपन से ही बाबा के बच्चे हैं, पिछले 40 वर्षों से ज्यादा यज्ञ में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर विंग के मधुबन के हेडक्वार्टर, मधुबन के कोऑर्डिनेटर हैं, साथ ही साथ भोजनालय रसोई जो है उसका व्यवस्थापन भी देखते हैं। और वंडरफुल एक बात कि पिछले 15 वर्षों से भाई जी जो है वो विदेशियों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो ऐसी विभूति हमारे मध्य आज है तो हम बहुत भाग्यवान हैं। तो हम सभी जोरदार तालियों से भाई जी का स्वागत करेंगे और मधुर वाणी से सब कुछ भाई जी को जानते हैं। तो आज हम बाबा भाई जी का क्लास जो है मधुर क्लास हम सुनेंगे। थैंक यू सो मच।
ओम शांति। सभी ने कहा ओम शांति। सर्वप्रथम आप सबका एक बार फिर से मधुबन में आने की बधाइयां देता हूं और फिर स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत। स्वागत है ईश्वरीय जीवन, दैवी जीवन की प्राप्ति की बधाइयां हैं और बड़ा अनमोल समय मिला आप सबको कि दूर दूर से भी व्यस्त रहते हुए भी बच्ची को इम्पोर्टेंस देते हुए समय निकाल के आप सब यहां पर आए हैं। तो ऐसी विशेष भट्टी अटेंड करने की, मन लगा करके पूरे मनोयोग से भट्टी को अटेंड करके अपने अंदर तपस्या से शक्ति भरने वालों का और मधुबन में आने का सौभाग्य प्राप्त करने वालों का और अपने भट्टी से शक्ति भर करके बाबा का नाम रोशन करने की इच्छा रखने वालों का, और आज की मुरली के अनुसार अपने से वादा करने वालों का कि मुझे बहुत बहुत मीठा बनना है, मुझे सुख की और दृष्टि से, प्यार की दृष्टि से सबको देखना है, किसके नाम रूप में नहीं फंसना है, इस बात को डबल अंडरलाइन करने वालों का, और प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो विशेष योग की सिद्धि प्राप्त करने वालों का, अपने कर्मेंद्रियों को वश में करने वालों का और पक्के योगी बच्चों का, जिनके अंदर कर्मेंद्रियों की जरा भी चंचलता नहीं है और जो किसी भी देहधारी में जिनकी रंचक मात्र भी आंख नहीं डूबती है और जो बाबा के इन वचनों को समझते हैं कि अब हम सब जवान नहीं है, हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, इस बात को अच्छी तरह समझने वालों का धारणा सार के अनुसार और सब बातों को छोड़ करके ज्ञान दान करने वालों का, रूप बसंत बनने वालों का, अपने अवगुणों को निकालने वालों का और दूसरों को न देखने वालों का और किसी के भी नाम रूप में न फंसने वालों का और सबको सुख देने वालों का, किसी को दुख न देने वालों का, कर्मेंद्रिय जीत बनने वालों का और वरदान के अनुसार संपूर्ण समर्पण की विधि से सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में विजयी बनने वालों का, सदा विजयी बनने वालों का और जो मन को वश में रखता है वही मन मनाभव हो सकता है, इस बात को समझने वालों का और अपवित्रता के बीज को भस्म करके संपूर्ण स्वच्छ बनने वालों का। बाबा कहते हैं कि बॉडी कॉन्शियस को भी समर्पित कर देना और स्मृति है बीज, पवित्रता और अपवित्रता का कारण है, तो सबको देवी तुल्य देखने का, देखने वालों का और कमरा छोड़ करके आज के इस सत्र में उपस्थित होने वालों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई है। भट्टी आप सबने की होगी और बहुत मटेरियल मिला, बहुत कुछ सुनने को मिला, समझने को मिला, आगे की गाइडलाइन भी मिल गई, सब कुछ मिला। मेरा आप सबसे प्रश्न है कि क्या समझते हैं कि भट्टी सुनने के बाद आगे का मुझे करना क्या है, उस पर फोकस है आपका, क्या करेंगे? ये तो आप सबका अनुभव सुनना था लेकिन कुछ अपने अनुभव से आप सबको कुछ बताना चाहता। भट्टी जो हो रही है, जब तक आप अपने सेल्फ प्रोग्रेस के लिए सेल्फ प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तब तक इसमें सफलता संपूर्ण नहीं मिलेगी और उसका आधार है कि अपने को सारभूत करने का। अब करना क्या है, दिनचर्या कैसे बनानी है, हमको दिनचर्या में कौन कौन सी बातें याद रखनी है, नोट करनी है, इस बात को अच्छी तरह से जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे अपने लिए तब तक वो सब संदिग्ध रहेंगे सारी पुरुषार्थ। मैंने कहीं पर स्लोगन लिखा, बहुत अच्छा देखा, उसमें लिखा कि बेहद का वैराग्य और साक्षी भाव, ये हमारे ईश्वरीय जीवन के पुरुषार्थ के सबसे बड़े शिखर हैं, लक्ष्य हैं। ईश्वरीय जीवन का लक्ष्य क्या है, पहले पुरुषार्थी जीवन का, वह बेहद का वैरागी बनना और दूसरा साक्षी भाव रखना। यदि बेहद का वैराग्य नहीं है तो हमारा त्याग धोखा है। नोट कर सकते हैं, बेहद के वैराग्य के बिना आपने कुछ भी त्याग किया तो धोखा है। बेहद के वैराग्य के बिना तपस्या हठ है। बेहद के वैराग्य के बिना तपस्या हठ है। आप तपस्या कर रहे हैं, बेहद का वैराग्य तो हुआ ही नहीं, इंद्रियों की चंचलता को समाप्त करना चाहते हैं तो हट से आप कर रहे हैं, लेकिन वहां से मुक्त हुए तो फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। इसलिए बेहद के वैराग्य के बिना त्याग धोखा है, तपस्या हट है और पुरुषार्थ रेत के ऊपर मकान है, रेत के ऊपर मकान है। आप कुछ भी पुरुषार्थ कर लो, आज बहुत अच्छा है, बहुत उमंग उत्साह है, बहुत आनंद की स्थिति है, अतीन्द्रिय सुख भी मिल रहा है, लेकिन यदि बेहद का वैराग्य नहीं है तो पुरुषार्थ रेत के ऊपर मकान बनाना है, वो भी है और भी नहीं है। तो अपने पुरुषार्थ के अंतिम लक्ष्य में ये नोट कर लें कि हमें चिंतन के द्वारा, ज्ञान के शक्तिशाली चिंतन के द्वारा सब कुछ करते हुए भी बेहद का वैरागी बनना है। बाबा का जो बेहद का वैराग, बाबा का जो वैराग्य था वो बेहद का वैराग्य था। तीन प्रकार के वैराग्य हैं। एक है सत्व प्रधान वैराग्य, जो ब्रह्मा बाबा को एक बार देख लिया कि ये पुरानी दुनिया ये मेरे काम की नहीं है, तो गई की गई, इतने साल बीत गए तो भी बाबा कहते बच्चे कल ही तो ऐसे होने वाला है, मैं कल मिचलू बनने वाला हूं, मैं ऐसे बनने वाला हूं, अगली दिवाली आने वाली नहीं। बाबा ने पहले ही बता दिया सब बहनों को, सब भाइयों को, और स्वयं भी लग गया उसमें। बाबा का वैराग्य सतो प्रधान वैराग्य था कि एक बार वैराग्य हुआ तो दोबारा राग नहीं हुआ। दूसरा रजो प्रधान वैराग्य है, जैसे और धर्म स्थापकों को हुआ, महात्मा बुद्ध को हुआ, देखा ये तो दुनिया बड़ी दुखी है, कोई बुजुर्ग हो गया है, कमर झुक गई है, देखा ये तो ऐसा होगा, तो युवा फेस्टिवल में जाने के फायदे क्या है, जब देखा कोई मर गया तो कहते मरना है तो ठीक है अभी से मर जाते, फिर करना क्या है, इतना संसार में दुख क्यों है, ये संसार में दुख ही दुख है, इसलिए संसार से निकल चले, निर्वाण धाम में चले, निर्वाण की स्थिति प्राप्त कर ले। ये था रजो प्रधान वैराग्य। अगर उनको ये पता होता कि ये दुनिया बदल करके यहां पर संपूर्ण सत्व प्रधान सृष्टि भी होती है तो शायद उनको वैराग्य होता ही नहीं, ठीक है। तीसरा वैराग्य है वो तमो प्रधान वैराग्य है, जिसको शमशानी वैराग्य कहते हैं। शमशान में गए तो राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, और वापस आए फिर पूरी पकौड़ी में लग गए, है ना। तो ये वैराग्य है क्षणे तुष्टम क्षणे रुष्टम, अभी वैराग्य है और भी राग है, राग और वैराग्य के चक्रव्यूह में फंसे होते हैं। इसलिए आइए हम सब अपनी दिनचर्या में निरंतर पुरुषार्थ होता रहे। तो एक तो पहली बात नोट कर लें कि बेहद का वैराग्य हो, सवेरे से लेकर के शाम तक कम से कम 20-25 बार इस बात की स्वतः स्फूर्त स्मृति होनी चाहिए कि ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, ये देख रहा हूं है ही नहीं, और जो देख रहा हूं ये अंतिम दृश्य है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना, और ये समझना कि आज ये है मैं देख लेता हूं और फिर ये कल होने वाला नहीं है, नहीं देखूंगा। मम्मा भी यही कहती थी पुरुषार्थ, किसी ने पूछा मम्मा से कि मम्मा आप मम्मा कैसे बन गए, पुरुषार्थ का क्या है, तो मामा ने बताए दो तीन चीजें अलग अलग बताए, बताते हैं भाई बहने। एक तो मामा का ये पुरुषार्थ रहा कि एक बार की हुई भूल को दोबारा कभी नहीं होने दिया, और दूसरा हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इस बात को अंडरलाइन किया मामा ने। तो जब तक आप इस दुनिया में रोज अवतार होकर के अवतरित तो होकर के नहीं आते हैं, दिनचर्या का फाउंडेशन सवेरे पहली ही दृष्टि पहली स्मृति प्रारंभिक 10 मिनट इस संकल्प के साथ आपका आपका दिन शुरू होना चाहिए, आपकी दिनचर्या शुरू होनी चाहिए कि मैं यहां का हूं ही नहीं, मैंने तो अवतार लिया है। जिसने इस बात को पक्का कर लिया कि मेरा अवतार हुआ है, आज के दिन मैं फरिश्ता वतन से बाबा के काम के लिए मैं आया हूं और मुझे तो जानना है, जब तक मैं महान हूं और मेहमान हूं ये स्मृति पक्का नहीं होती है, तब तक हम दिन में ढेर सारी बातों में करते हैं, ये पुरुषार्थ करूं, वो पुरुषार्थ करूं, इनका क्लास सुना, उनका क्लास सुना, सब भर गया। फिर बाद में कुछ नहीं होता तो कुंठा आ जाती है मन में कि ये तो होता ही नहीं, क्या करूं, कैसे करूं पुरुषार्थ। तो जो बीज है, बेहद का वैरागी का बीज है, ये दुनिया मेरी है ही नहीं, ये देह मेरा है ही नहीं, यहां कुछ भी मेरा है ही नहीं, ना मैं हूं यहां का, ना यहां की कोई चीज मेरी है। जब ये संकल्प आ जाता है तो बेहद का वैराग्य प्रारंभ हो जाता है। तो सवेरे से लेकर सवेरे पहले ही, और मेरा तो अपना अनुभव है कि दिन भर में मैं कोई भी चीज देखता हूं तो स्वतः स्फूर्त मेरे मन में आता है कि आज ये मैं कर रहा हूं, मैं मिल रहा हूं, फिर पता नहीं थोड़ी देर के बाद मैं रहूं या न रहूं। ये पल अंदर 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 बैठना चाहिए। तो हर पल को अंतिम पल है और हर पल सबसे अच्छा पल है, दोनों रहे। केवल अगर रहे कि हर पल अंतिम पल है, अब तो नहीं होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये होगा, केवल यही याद रहा कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, तो आप उदास हो जाएंगे। अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना भी है, इसको भी जोड़ दीजिए। दोनों होना चाहिए। तो ये होना चाहिए कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, और मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल ये है जब मैं यहां पर विले पार्ला वाले और सब भट्ठे में जो बैठे हैं इन सबके सामने बैठा हूं, और इस पल में बाबा जो भी सुना रहा है, जो सुनवा रहा है, ये हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव होना चाहिए, और ये सबसे उत्तम घड़ी। फिर ये घड़ी मिलने वाली नहीं, हम सब कल्प कल्प मिले हैं, लेकिन ये घड़ी अंतिम घड़ी, सबसे अच्छी घड़ी। तो इंजॉय कीजिए, हर घड़ी को खूब जिए, आनंद लीजिए, आनंद ही आनंद ईश्वरी जीवन में। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञानामृत से अंतर का कोना कोना, अंतर का कोना कोना। तो तपस्या का सार ये होना चाहिए, एक तो बेहद का वैराग्य अंदर में आए, दूसरा साक्षी भाव हो। साक्षी भाव स्वयं के शरीर से अलग हो जाए, स्वयं के संस्कारों से अलग हो जाए, स्वयं के शरीर में अपनी श्वासों का जो आना जाना हो रहा है इस पर ध्यान केंद्रित करें, इसको भी साक्षी होके देखें कैसे शरीर में सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, इससे साक्षी हो। अपने विचारों से साक्षी हूं कि मेरे मन में विचार कैसे आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, ये विचारों को। फिर स्वयं के शरीर को देखें, सामने देखें। आज सवेरे अमृत वेले मैंने यही अभ्यास किया कि सामने देख रहा हूं कि मेरा संपूर्ण शरीर है और बाबा है, दोनों सूक्ष्म वतन में दिखाई पड़ रहे हैं, और दोनों से फोर्स मिल रहा है, और मेरे शरीर की हीलिंग हो रही है, पूरा कायाकल्प हो रहा है, मैं इसको ही एनर्जी दे रहा हूं। ऐसे इस प्रकार के साक्षी भाव के संकल्प ये आपको तटस्थ रखेंगे, न्यूट्रल रखेंगे, किसी बात में अटैच नहीं होंगे, होने देंगे। साक्षी भाव ऐसे विश्व नाटक के प्रति भी साक्षी भाव। सामने देखें, ग्लोब है, ग्लोब में सतयुग भी आ रहा है, सतयुग गया, त्रेता युग गया, द्वापर युग गया, कलयुग गया, संगम युग आया, ये भी गया, इस तरह से देख रहे हैं। तो पूरी सृष्टि चक्र को देखें, फिर अपनी कहानी को भी देखें कि मैंने 84 जन्मों में कहां कहां कैसे पार किए, साक्षी होके देखें, अपने 84 शरीर कर लें सामने, और 84 शरीरों को जैसे एक शरीर देख रहे हैं, वो कैसे है, दूसरा, तीसरा, चौथा कैसे, और हो सके तो इसमें भी करें, एक शरीर में इंटर हो, अपनी आंखें ऐसे करें, खोले, फिर जैसे कि मैं उसमें से निकल करके अब दूसरे शरीर में आया, फिर दूसरे शरीर में चैतन्य हो जाइए, फिर तीसरे शरीर में गया, ऐसे 84 जन्मों के शरीर में गया तो मेरा अनुभव कैसा रहा? इस भाव को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आनंद है। तो दूसरा है साक्षी भाव। साक्षी भाव को जितना जितना धारण करेंगे उतना ही आप दिन की दिनचर्या में सब कुछ करते हुए भी न्यारे रहेंगे और प्यारे रहेंगे। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है पुरुषार्थ में, निस्वार्थ वृत्ति और निर्दोष दृष्टि। निस्वार्थ वृत्ति और निर्दोष दृष्टि, आ रही बात समझने? सबको आ रही समझ बात ना? निस्वार्थ वृत्ति का मतलब है मेरा कोई में भी कोई स्वार्थ नहीं। स्वार्थ ना होने का क्या होना चाहिए रीजन? मैं निष्काम सेवाधारी हूं बाबा की तरह। जहां पर कामनाएं हैं, जहां स्वार्थ है, जहां भी आप अटैच हो जाएंगे हद की बातों से, वहां पर ही स्वार्थ उत्पन्न होगा, फिर निस्वार्थ वृत्ति नहीं बन पाएगी। और ये संकल्प लेना कि मैं निष्काम सेवाधारी हूं, मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, मेरी कुछ कोई कामना है ही नहीं। बाबा कहते हैं कि कामनाओं से मुक्त होने के लिए, इच्छाओं से मुक्त होने के लिए शुद्ध कामनाएं करें, शुभ कामनाएं, सबका भला हो। एक कामना यही है, सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। तो इस प्रकार से निस्वार्थ वृत्ति और निर्दोष दृष्टि, इस सृष्टि में किसी का दोष है ही नहीं। आप सबको मालूम होगा जब दीदी जी ने शरीर छोड़ा था, दीदी मनमोहिनी ने, तो अपने ईश्वरीय परिवार के भाई बहनों को बड़ा मन में आक्रोश था। आक्रोश क्या आया कि अगर डॉक्टर भगवती ने दीदी का सही ऑपरेशन किया होता संजीदगी के साथ तो दीदी हमारे बीच में होती। सबको मन में ये थी। बाबा आए, बाबा ने कई भोग में, कई मैसेज में बहुत अच्छे दिए। एक मैसेज इतना अच्छा मिला कि आनंद आ गया, तब से वो मन में अच्छी तरह बैठ गया, जिसमें बाबा ने कहा बहुत अच्छा। उसने कहा बच्चे इस विश्व नाटक में किसी का दोष है ही नहीं, ना प्रकृति का दोष है, ना अपने शरीर का दोष है, ना व्यक्ति का दोष है, ना तो वस्तुओं का दोष है, और यहां तक बताया कि ना तो इसमें भगवान का दोष है, और फिर बोला ना भगवती का दोष है। ना भगवान का दोष है, ना भगवती का दोष है, भगवती डॉक्टर। तो वो बाबा ने जब से बताया इतना मन में आनंद आया कि अगर निर्दोष दृष्टि बनानी है तो इस संकल्प को याद रखना है, ये विश्व नाटक बहुत अच्छा है, इसमें कोई चीज कमी और कमियों की, कहीं कमजोरी की कहीं गुंजाइश नहीं। ये कुदरती और भगवान को ही ड्रामा प्रिय, और भगवान का ड्रामा और भगवान को अच्छा लगने वाला ड्रामा हमको बुरा कैसे लग जाए? शुरू शुरू में हमारे भाई बहने जब ज्ञान में आते हैं और उनको ज्ञान दिया जाता है कि 5000 वर्ष के बाद फिर यही होगा, कहे भैया फिर होगा, फिर वही होगा, तो उनके घबराहट होती है एकदम, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत घबराहट होती है। लेकिन ज्ञान में चलने के बाद धीरे धीरे करके जब अच्छाई लगने लगती है, अच्छी अनुभूतियां होने लगती हैं, तब अच्छा लगने लगता है, वाह अब ड्रामा जो हुआ वो अच्छा हुआ, ड्रामा में जो भी था वो बड़ा अच्छा हुआ। और मैं एक गीत गाता हूं प्रायः, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, होगा जो अच्छा ही होगा, क्या हुआ जो रो दिए, लाए क्या जो खोदी, क्या बनाए जो मिट गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, होगा जो अच्छा ही होगा। जो लिया सब कुछ यहीं से, जो दिया सब कुछ यहीं पे, लाए क्या जो लूट गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, होगा जो अच्छा ही होगा। कल तलक जो तेरा था, आज है किसी और का, कल किसी का हो जाएगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, होगा जो अच्छा ही होगा। बदलते इस विश्व का, सब कुछ बदलता जा रहा, चिंता करके क्या हुआ, सोच करके क्या हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। शिव की रचना सत्य सुंदर है, सुमंगल और सुकर, सोच करके क्या हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा ही होगा। पुण्य की पूंजी कमा ले, पुण्य की पूंजी कमा ले, भाग्य तू अपना बना ले, सेवा करके ले दुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा, और जो हो रहा अच्छा ही होगा, होगा जो अच्छा ही होगा। तो इस प्रकार से और कई बार कई घटनाएं ऐसे ऐसे हुई कि जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ड्रामा कितना कल्याणकारी है। इस ड्रामा की खूबसूरती को जितना आनंदित होकर के देखें, कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लें, अलर्ट हो जाएं कुछ पल के लिए और देखें इस विश्व नाटक को, देखें जैसे मेरे सामने एक ग्लोब रखा है, सृष्टि चक्र के ग्लोब में मैं देख रहा हूं, कितना खूबसूरत ये ड्रामा है। ये विश्व नाटक परम कल्याणकारी है, स्वयं परमात्मा को भी ये नाटक बहुत प्रिय है। ये नाटक संपूर्ण सत्य है, ये अविनाशी है, ये कल्प कल्प की नूंद है। इसका हर दृश्य बड़ा ही मनभावन है। इसमें मेरा पार्ट सबसे अच्छा है, मेरा इस विश्व नाटक में 84 जन्मों का सबसे सुंदर पार्ट है। मैं इस विश्व नाटक में बड़ा ही लोकप्रिय अभिनेता हूं। मेरे एक एक पार्ट से, एक एक एक्टिंग से स्वयं भगवान को भी बड़ी प्रसन्नता होती है। वाह ड्रामा, वाह बच्चे, वाह रे मैं, और वाह वाह के गीत निरंतर निकलते रहते हैं। ओम शक्ति। विश्व नाटक की इस खूबसूरती को देखेंगे तब निर्दोष दृष्टि और निस्वार्थ वृत्ति बनने में बड़ा ही सहयोग मिलेगा। इसके साथ साथ रोज ही आपकी तपस्या चलती रहे, आपको सुझाव देता हूं, चार प्रकार की तपस्या नित्य करनी है, हर रोज चार प्रकार की तपस्या। नोट कर लें, ये मैं करता हूं स्वयं अपनी दिनचर्या में। कभी कभी दिन की दिनचर्या में तीन तीन चार चार बार गीत होता है, गीतों का बनाना, उनकी रिहर्सल करना, प्रेजेंट करना, बहुत कम टाइम होता है आत्म मंथन करने का, अपने अंदर जाने का, अपने लक्ष्य को, अपनी दिनचर्या को रूहानियत से भरने का। तो भी कैसे भी करके अपनी दिनचर्या को मैंने कुछ ऐसे सिद्धांत दिए हैं, ऐसे स्तंभ बनाए हैं, ऐसी धारणाएं बना ली हैं कि उसके आधार से दिनचर्या में लगातार हमारी दिनचर्या एक सॉलिड होती है। उसमें मैं अपनी दिनचर्या में पर्सनली रूप से अमृत वेला को बहुत महत्व देता हूं, और यहां बैठता हूं या शांति वन में हूं, कहीं पर भी हूं, ये मेरा सौभाग्य है कि स्थान मिलता है, स्थान से स्थिति भी बनती है। यहां बैठ करके कितने वर्षों जब योग में बैठते हैं तो इतना अच्छा अनुभव होता है, और उन्हीं अनुभूतियों से जब बाहर भ्रमण करने के लिए निकलता हूं तो एक भ्रमण में, एक नकी लय के एक राउंड में मेरे कितने गीत बन गए, कितने गीत, पूरा राउंड लिया और एक गीत बना। मुझे याद है जिसे रघुनाथ मंदिर के पास वहां है, और वहां चल रहा हूं तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं सवेरे, एक टाइम है 5:30 बजे का 6 बजे का, थोड़ा थोड़ा हल्का अंधेरा सा होता है, थोड़ा उजाला भी होता है, ना लोग दिखाई पड़ते हैं ना जानवर दिखाई पड़ते हैं उसमें, उसी समय एकांत में बहुत अच्छे गीत बनते हैं। और मैं चल रहा हूं तो याद आ रहा है कि तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया है, पास में बुला लिया है प्यार में समा लिया, पास में बुला लिया। चलते हैं जब जमीन पर लगता गगन में चल रहे हैं, उमंग में उड़ रहे हैं, रंग में रंग रहे हैं, तुम्हारे उमंग में उड़ रहे हैं। तो अच्छे अच्छे संकल्प ऐसे गीत बने तो उन गीतों को सुनकर बात है। तपस्या वर्ष के दिन थे तो उन्हीं दिनों में एक गीत लिखा था, वो गीत तपस्या सॉन्ग्स में है। लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में सुचिता का होने लगा उजाला। आत्म शुद्धि की अग्नि परीक्षा की घड़ियां हैं आई, व्यर्थ विकल्पों की बीमारी लेने लगी विदाई, विस्मृत होने लगी पुरानी दुनिया दैहिक भान, होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान। इस तप से ही स्वर्णिम युग का तेज निकलने वाला, जीवन आंगन में सुचिता का होने लगा उजाला। मन की गति पर हुआ नियंत्रण, संस्कार परिशोधन, शिव से कर तादात्म स्वयं को, करते निज संशोधन, चिंतन लगा चमकने, चित की चंचलता कुंभलाई, निर्मलता ने निर्बलता पर विजय श्री है पाई। वाह तपस्या, तेरा अनुभव रस भी बड़ा निराला, और जीवन आंगन में सुचिता का होने लगा उजाला। अटल तपस्या यही है जिससे सारे विघ्न टलेंगे, अटल तपस्या यही है जिससे सारे विघ्न टलेंगे, और मैपन के सब अस्थि गलेंगे, भाव भय बंध मिटेंगे, मैपन के सब अस्थि गलेंगे, और पंच तत्व परिवर्तन होंगे, निज को जब बदलेंगे, सूक्ष्म फरिश्ते हंसते गाते प्यारे वतन चलेंगे। वो देखो इस तप के बल से सतयुग आने वाला, और जीवन आंगन में सुचिता का होने लगा उजाला, और लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में सुचिता का होने लगा उजाला। अब आप ताली बजा सकते हैं। तो इसमें एक एक लाइन में हमको आगे करना क्या है, हमारी इस भट्टी का सार क्या है, वो इसमें निकलता है। तो चार प्रकार की तपस्या करना है। एक पहला है आत्म अभिमानी बनने की तपस्या, आत्म अभिमानी बनने की तपस्या। इस तपस्या को एकांत लेकर मन लगा के इसमें रस लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे तो अपना अनुभव याद आता है, कि जितना मैं स्वराज अधिकारी बनने के अभ्यास में आया उतने नए नए गीत बड़े अच्छे अच्छे गीत बन गए। जैसे अय आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। एक गीत बना तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं। एक गीत बना भिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे पलकें उठाकर निहारा करूं, बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको बिठाकर मिलन में मनाया करूं। एक आत्म अनुभूति का गीत बना मैं जगमगाती मैं झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि। फिर एक गीत बना, वो गीत है आप भी ऐसे बैठ जाएं, फिर से एक बार बैठ जाएं और अनुभव करें साथ में और बहुत अच्छी फीलिंग है उसमें। अपना सिर अपना हाथ सिर पर रखें दाहिना हाथ और फील करें अनुभव करें इसके अंदर। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्म इंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए, करें मंत्रणा अपने मन मंत्री से, समाचार पूछें सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की सेना सजग है जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए, खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, जो खोया था स्वराज फिर से दिलाया, उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिलके गाए, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए, कर्म इंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना लगाए अपना सजाए। निश्चल ये आत्मचिंतन परिवर्तन की प्रयोगशाला, आत्मविमानी बनने की प्रयोगशाला हम सबको निरंतर करते रहना है। कैसे करेंगे? दिन की दिनचर्या में एक घंटा न सही तो आधा घंटा जरूर निकालना ही चाहिए जिसमें हम आत्म परिवर्तन की प्रयोगशाला में आत्मविमानी बनने की प्रयोगशाला में बैठे आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, आत्मदर्शन करें, आत्मअन्वेषण करें, आत्मविश्लेषण करें, आत्मसंशोधन करें, आत्मपरिमार्जन करें, आत्मनिरीक्षण करें, आत्मपरीक्षण करें, आत्मपरिवर्तन करें। बड़ी अच्छी प्रयोगशाला है। मुझे याद है छोटा सा अनुभव मैं प्रायः बताया करता हूँ। 86 की लगभग ओम शांति भवन नया नया बना था, किचन भोजन बनाते बनाते मैंने दादी को कहा, भोले दादी को कि दादी मुझे छुट्टी चाहिए और मैं ओम शांति भवन में ऊपर ऋषि गुफा में खाली खाली था उन दिनों में, वहां जाके मैंने भट्टी किया। मैंने सोचा रोज ही गड्ढा खोद रहा हूँ, रोज ही आत्मज्ञानी बनने प्रैक्टिस करता हूँ, कुछ होता तो है नहीं, मैं लग करके कुछ करूंगा। और सचमुच गया, मैं सारा दिन लगा रहा, कुछ हुआ ही नहीं, सारा दिन लगा रहा। मुझे मालूम नहीं कि याद नहीं कि भोजन किया कि नहीं करता रहा, लेकिन खूब लगा। लेकिन जब आनंद जो आना चाहिए था नहीं मिला तो मेरे मन में आया कि ऐसे छोड़ूंगा नहीं। दूसरे दिन फिर पहुंच गया सवेरे सवेरे और दादी कहा दादी एक दिन और छुट्टी चाहिए, तो दूसरे दिन में लग गया। दूसरे दिन भी लगा, फिर शाम तक आनंद आने लगा, लेकिन लगा कि अभी भी जरूरत है। उधर दादी बड़ी दादी के पास गई और बताया कि दादी वो तो कल से भट्टी कर रहा है, आज भी गया है। कहा कहाँ? कहा ओम शांति भवन में भट्टी कर रहा है। अच्छा, क्या बात। दादी ने क्लास में बोल दिया, कोई आके मिला मेरे से तो बोलता है आज तो दादी ने क्लास में बोल दिया आप भट्टी करें। मैंने कहा लो, अभी तो जलाई भी नहीं भट्टी, सुलगाई भी नहीं, धुआं भी नहीं होगा, नामाचार पहले ही हो गया, अब तो करना ही पड़ेगा कुछ। फिर मैं तीसरे दिन सवेरे एक दिन और छुट्टी लिया, और तीसरे दिन जो मेरा रंग आया कि 2:30 बजे सवेरे का जो समय था, मुझे वहां कॉन्फ्रेंस ऑफिस है, हॉल है बाबा के कमरे में जाने का ओम शांति भवन में, तो वहां पहुंचता हूं तो 2:30 बजे का समय, मैं देख रहा हूं कि मैं कब उठा, कब फ्रेश होके, कब तैयार होके यहां आ गया, मुझे कोई होश नहीं। तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं मैं सूक्ष्म शरीर में आया हूं, पुराना शरीर छोड़ करके, या स्थूल शरीर में आया। तो देखता हूं ऐसे ऐसे करता हूं, अरे ये तो स्थूल शरीर है, कोई मैं सूक्ष्म शरीर में नहीं आया हूं। तब ध्यान गया कि मैं कब गया, मना शाम तक ऐसी स्थिति हो गई कि जिसका प्रभाव एक हफ्ते तक मैं किसी से बोलू ही नहीं, और जो देखूं तो सब आत्माएं 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 आत्माएं, फरिश्ते फरिश्ते यही दिखाई पड़े। इतनी लगन लगी कि आज तक भी वो दिन 3 दिन भुलाए नहीं भूलता है, और जो मजा आया आज तक वो सुनाने में भी आनंद आता है, और मुझे तब तक चैन नहीं मिलता है जब तक उसका थोड़ा भी अंश मिल जाए आत्म चिंतन की गहराई में, तभी एक गीत निकले ढेर सारे, और इसको मैं खुद ही आनंद लेता हूँ स्वराज अधिकारी का। अब ये भी देखिए, तो मैं राजा बना हूँ तो राज दरबार लगाता हूँ, मस्तक सिंहासन बैठता हूँ, थोड़ी देर के बाद देखता हूँ कि मैं किचन में गया और कुछ चीज देखा और मन गया, आंखें गई, जलेबी बना है या कुछ बना है, अच्छा उसको देखा, मुंह में पानी आया, सोचा कि नहीं खाना चाहिए, फिर कहा खा लेना चाहिए, भोग का दिन है, बना है, एक खा लो, अच्छा एक ले लिया तो मन कहता चलो एक और ले लो, मिलता तो एक ही था लेकिन चलो दूसरा भी ले लिया, तो जहां ना खाने वाला वहां दो दो खा गया, और मन चाहता तीसरा मिल जाए तो दोपहर के लिए रख दूं, तो सोचा है कि तो और भी जघन्य अपराध हो जाएगा। तो सोचता हूं अब मैं राजा रहा ही नहीं, अब तो राजतंत्र रहा ही नहीं, अब तो लोकतंत्र आ गया, तो फिर क्या करता हूं कि मैं आत्मा राष्ट्रपति हूं, नाम मात्र, मैं आत्मा राष्ट्रपति हूं और मन जो है हमारा प्रधानमंत्री बन गया है, और ये जो सिर है ना ये शिक्षा मंत्री बन गया है, ये आंखें कानून मंत्री बन गई है, कानून मंत्री का कानून अंधा होता है, ये कानून मंत्री, ये जो है नाक जो है जांच प्रदूषण मंत्रालय यहां आ जाता है, ये कान जो है संचार कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, ये जांच ये संचार मंत्री, और मुख सूचना प्रसारण मंत्रालय, ये सूचना प्रसारण, ये दांत को है खाने पीने के उद्योग धंधे में, तो उद्योग है ना, बिले पार्ला वाले जो है वह व्यापार उद्योग वाले, वैसे भी तो ये उद्योग धंधा यहाँ पर बराबर चलता रहता है, है? फिर जीभ है वो अपना काम करती रहती है, रस लेती रहती है, तो ये मंत्रालय है, खाद्य मंत्रालय यहाँ चलता है, फिर ये पेट क्या है, पेट परिवार कल्याण मंत्रालय यहाँ हो जाता है, अगर खाओगे नहीं तो कल्याण कैसे होगा, ये क्या है रोजगार मिनिस्टर है, अगर कुछ करोगे नहीं तो बम्बई रहकर खाओगे क्या भाई, कुछ तो कमाना पड़ेगा, तो रोजगार मिनिस्टर ये हो जाता है। ये चमड़ी क्या है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री, अगर चमड़ी ना हो तो डिफेंस कैसे हो, हैं? ये क्या है, होम मिनिस्ट्री यहाँ पर है, पूरा पूरे बॉडी को संचालन करता है, ये होम मिनिस्ट्री है। ये टांगे क्या है, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, अगर ये ट्रांसपोर्ट ना हो तो कोई काम ही नहीं चले। तो इस तरह का है, कभी राजतंत्र किया तो कभी लोकतंत्र देखता हूँ। लोकतंत्र में क्या करते हैं, कुर्सी उठाते हैं, माइक रखते हैं, ऐसा करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो यहाँ कभी ठक होता है, कभी यहाँ ठक होता है, कभी यहाँ होता है, कभी होता है, पूरे शरीर वाले पूरे शरीर में अंग प्रत्यंग जो है वो लड़ते भिड़ते रहते हैं, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी, लेकिन ये आनंद लेने का पल है। तो आत्मनिर्भरी बनने की ऐसी तपस्या करनी बहुत जरूरी है। आप बैठे और आनंद लें तो इतना प्यारा है आत्मनिर्भरी बनने की लगन कि बहुत अच्छा है। ये निरंतर करते रहें, इसमें बैठे तो बहुत आनंद आएगा। तो आपसे उम्मीद है कि ये तपस्या रोज कुछ पल जरूर करें। दूसरी तपस्या है निरंतर याद की तपस्या। निरंतर याद की तपस्या, कभी मौका मिला तो फिर बताऊं आपको कि आत्मज्ञानी बनने में कैसे शरीर से अलग होने का प्रयास करें। अलग अलग उपमा देकर कि शरीर मोती है, ये शरीर सीप है, मैं मोती हूं, ये दीप है, मैं ज्योति हूं, ये तन है, मेरा रथ है, मैं इसमें रथी हूं, भगवान सारथी है, ऐसे करके अलग अलग उपमा देकर के भी कर सकते हैं। निरंतर याद के लिए यहां पर ऐसे हाथ करें और अनुभव करें कि बाबा मेरे सिर पर कुछ ही दूरी पर यहां पर हैं बाबा, और शिव बाबा की किरणें लाइट के रूप में मेरे ऊपर निरंतर बरस रही हैं। तो अनुभव करें बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा। ये केवल एक अभ्यास दिन भर में, यही कि मैं सो रहा हूं तो बाबा की छत्र छाया के नीचे, मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मेरी गाड़ी पर भी बाबा की लाइट, बाबा की छत्र छाया, मैं चल फिर रहा हूं, खाना बना रहा हूं, खा रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, अगर इसी सेंस को या इसी कॉन्शियस को या इस फीलिंग को, इसी अनुभव को आपने दिन भर में 15 बार 20 बार कर लिया तो आप देखेंगे बहुत आनंद है। तो ये बाबा से निरंतर, और यही एक अभ्यास आपको अंत में भी अंत मते सागते बना देगा। शरीर जा रहा है, छूट रहा है, और लग रहा है कि बाबा की लाइट आ रही है, और एक हुक की तरह बाबा मुझे आत्मा को लेकर के किरणों में अपने पास बुला रहे, मुझे वतन में जा रहे, शरीर जा रहा है और मैं आत्मा जा रही हूं बाबा के पास। तो ये अभ्यास, एक अभ्यास करें तो आपको तमाम उसमें ढेर सारे बेनिफिट मिलते रहेंगे। कई बार कई बातों में जाते हैं, कई लक्ष्य बनाते हैं तो सफलता से हम दूर रहते हैं। जब एक लक्ष्य बना के उसके ऊपर खूब दिन भर में एक दिन आप मेहनत करके देखिए, आनंद आ जाएगा। ठीक है, तो निरंतर याद की तपस्या निरंतर करनी है। क्या संकल्प ले सकते हैं कि आज से भोजन पर, हम जब भी भोजन पर बैठे तो याद में बैठे, बाबा की याद में खाएंगे। चलो याद नहीं, कम से कम शुरू में मौन में खाएं। मैंने तो अलग अलग गीतों में बड़ा टिप्स बना लिया है, आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ, साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ, ऐसे करके दो बार तीन बार गाता हूं, तब तक बुद्धि एकाग्र हो जाती है और फिर खाना शुरू करता हूं। ऐसे ही घूमने के लिए भी, यहां पर बारिश के दिन है तो वहां डाइनिंग हॉल जहां आप भोजन ग्रहण करते हैं वहां से पूरा राउंड लेता हूं। अब याद करना है, निरंतर याद करना है तो कोई बहाना चाहिए, और हम मधुबन वाले नहीं करेंगे तो आप कैसे कर पाएंगे बम्बई वाले हैं और दूसरे वाले। तो क्या करता हूं, थोड़ा जॉगिंग करता हूं, पूरा चक्कर लगाता हूं, पूरा चक्कर एक बाबा रहा है देख, पूरा चक्कर दो बाबा कुछ कह दो, पूरा चक्कर तीन बाबा बड़ा हसीन, पूरा चक्कर चार बाबा करता प्यार, पूरा चक्कर पांच बाबा से रहो साँच, पूरा चक्कर छह बाबा कितने अच्छे, पूरा चक्कर सात बाबा मेरे साथ, पूरा चक्कर आठ पढ़े प्रेम का पाठ, पूरा चक्कर नौ बाबा से लगी लौ, पूरा चक्कर दस बाबा कहते बस। ऐसे भी करता अच्छा, और भी चलने मन करता, पूरा चक्कर ग्यारह माया नौ दो ग्यारह, पूरा चक्कर बारह मेरे तो पौ बारह, पूरा चक्कर तेरा बाबा मैं तो तेरा, बाबा मैं तो तेरा, ऐसे भी करके अभिनंदन करता। तो ये अब आप बैठ जाइए। तीसरा है संस्कार परिवर्तन की तपस्या। दादी जानकी जी कहती हैं कि एक संस्कार जो लगता था कि ये हमारे पुरुषार्थ में बाधा पड़ रहा है, डाल रहा है, उसके पीछे हम 6-6 महीने तक लग जाते थे, 3 महीने 6 महीने तक जब तक पूरा खत्म ना हो जाए। ऐसे ही हमारे जो संस्कार गहरे में है उनको समझना होगा और उनको अभी से जो आस्तीन की सांप की तरह बन गए हैं उनको मिटाना होगा। तो आइए उसके लिए संस्कार परिवर्तन करें। और चौथी तपस्या है संपूर्ण पावन बनने की तपस्या। इस तपस्या को हम में से हर भाई बहन को करना है। ये चारों तपस्या, आत्मज्ञानी बनने की तपस्या, निरंतर याद की तपस्या और संस्कार परिवर्तन की तपस्या और संपूर्ण पावन बनने की तपस्या, ये करते रहें। अंत में बैठ जाएं, आप पांचों स्वरूपों के लिए अभ्यास करें। ये अभ्यास बहुत काम में आता है। मैंने तो अलग अलग पल के लिए अलग अलग अभ्यास बनाए हैं जिनमें रहता हूं, लगातार प्रयास जारी है। बड़ा आनंद आ रहा है, जीवन का इतना आनंद आया है कि हम क्या बताएं आपको। मेरा तो मन करता है मैं सब आपको दे दूं, लेकिन जल्दी 9:30 बज गए, बहुत जल्दी समय समाप्त हो जाता है। लेकिन इतना स्वीकार करें कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं एकांत में मैं अकेले पड़ गया हूं, या मुझे कहीं से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, या पुरुषार्थ में लगता है बड़ी मुश्किल लगती है, तब सामने याद रखें हम आपके साथ में हैं। मधुबन वाले आपके साथ में हैं। आप कहीं भी रहिए, देश में रहिए या विदेश में रहिए, लेकिन कभी भी अनुभव न कीजिए कि मैं अकेला हूं। सारा ब्राह्मण परिवार, ईश्वरीय परिवार आपको सकाश दे रहा है, आपको साथ दे रहा है, आपको शक्ति प्रदान कर रहा है। आप उसके साथ मस्त रहिए, ठीक है। जैसे मैं कहूं आप दोहरा लीजिए, मैं ज्योति सितारा मैं देव प्यारा मैं पूज्य न्यारा मैं ब्राह्मण दुलारा फरिश्ता पधारा मैं ज्योति सितारा मैं देव प्यारा मैं पूज्य न्यारा मैं ब्राह्मण दुलारा फरिश्ता पधारा फरिश्ता पधारा।